Vrindavana Sri Govinda Gopinatha Madana Mohana Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Yamuna Jaya Jaya Mahavana Jaya Vrindavana Sri Govinda Gopinatha Madana Mohana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Sri Govinda Gopinatha Madana Mohana Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda
विनती है मन को एकाग्र करो सब कुछ भूल जाओ और भगवान का नाम लो
राधे राधे गोविंदा गोविंद राधे 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 गोविंदा गोविंद राधे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna
Krishna, Hare Hare,
Radhe.
Hare Krishna, Hare Krishna.
राधा कुंड धाम की, श्री ललिता कुंड धाम की, श्री श्याम कुंड धाम की, श्री गिरी गोवर्धन की, यमुना मई की, श्री वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री गुरुदेव और परम गुरुदेव, गुरु परंपरा और राधा और कृष्ण भगवान, श्री गौरांग महाप्रभु, इनकी असीम कृपा से, अचिंत कृपा से हम अभी राधा कुंड धाम में विराजमान हैं। 9 फरवरी 2018 के दिन, शुक्रवार के दिन, माघ कृष्ण पक्ष नवमी के दिन, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं कि राधा कुंड के स्थान पर निवास प्राप्त होना ये हमारे वैष्णव जीवन का परम लक्ष्य है। इसका अर्थ यही केवल होता नहीं कि यहाँ पर आपको आके रहना है या घर बनाना है या शिफ्ट होना है, एक क्षण भी आप यहाँ पर हो तो भी आप राधा कुंड का निवास में हो, राधा कुंड वासी हो। इसलिए जितने भी क्षण, जितने भी लव मात्र हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं उनको हृदय पूर्वक जीना चाहिए। यू शुड लिव दोज मोमेंट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। अन्य कोई भी विचार और विकार मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राधा कुंड जो है वो ब्रज के सारे क्षेत्रों में, इस ब्रह्मांड के सारे क्षेत्रों में, इस निर्माण के, सृजन क्रिएशन के सारे क्षेत्रों में सर्वोच्च धाम है। राधा कुंड के ऊपर कोई धाम नहीं है। जितनी आध्यात्मिक शक्ति, जितनी करुणा, जितनी कृपा राधा कुंड में है, वो विश्व में और कई स्थान में नहीं है। इसलिए राधा कुंड की असीम कृपा को स्वीकार करने में केवल एक ही बाधा हो सकती है, वो है विषयों का चिंतन, इंद्रिय भोग का चिंतन। मुझे क्या मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, इस प्रकार का चिंतन ही इस कृपा को ग्रहण करने में बाधा ला सकता है। इसलिए अनन्य चिंतन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक लव आपको श्री कृष्ण राधा रानी का नाम का चिंतन करते रहना चाहिए। बाकी प्रवचन होते रहेंगे, परिक्रमा होती रहेगी, सब कुछ होते रहेगा, शरीर हमारा यहाँ घूमते रहेगा, लेकिन आत्मा के पात्र में वही कृपा शामिल होगी, प्रवेश करेगी, जो आपने एकाग्र होकर अनन्य भाव से उनको पुकारा है। और भाग्य की बात यह है कि अन्य जगहों से उनको पुकारने में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ बैठकर पुकारने में बड़ी आसानी होती है। वातावरण इतना अनुकूल है यहाँ का, राधा रानी का निवास है, कृष्ण का निवास है, और हम अभी ललिता कुंड के किनारे बैठे हैं। मेरे पूरे पढ़ाई में मैं ये हमेशा खोजता रहा कि गर्भपात का पाप जो होता है उसका क्षालन कहाँ होगा। तो जहाँ तक जितनी पढ़ाई की उसमें खाली इतना ही लिखा गया था कि जो गर्भपात करता है, भ्रूण हत्या, गर्भ के अंदर ही बालक की हत्या स्वार्थ के लिए कर देता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को सूरज की रोशनी, दिन की रोशनी नहीं दिखाई पड़ेगी, ऐसे लिखा है। उसका मतलब क्या होता है, वो बार बार गर्भ में आता रहेगा, बार बार उसका गर्भपात होता रहेगा, और वो सूरज की रोशनी जो गर्भ में नहीं होती है, गर्भाशय में, तो कभी देखेगा नहीं। वो इतना जघन्य पाप है, इसका कोई उपाय ही नहीं है, कोई उतारा ही नहीं है, कोई उत्साह ही नहीं है इसके लिए, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इससे बचने के लिए। लेकिन फिर पढ़ते 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 पता चला कि ललिता कुंड एक ऐसी जगह है यहाँ पर 6 प्रकार की हत्याओं का शालन हो जाता है। उसमें गर्भपात, भ्रूण हत्या भी दी गई है, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, वृद्ध हत्या, और काफी हत्याएं हैं उसमें। भ्रूण हत्या का पाप भी यहाँ पर नष्ट हो जाता है। तो ललिता कुंड जो है वो बहुत ही कृपालु जगह है। जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड का निर्माण हुआ तो सब सखियों ने भी अपना कुंड बनाया यहाँ पर, उसी प्रकार से। तो अभी बाकी सखी क्यों, तो कुंड सब लुप्त हो गए हैं, लेकिन ललिता कुंड का अभी भी यहाँ पर आविर्भाव है। ये बड़ी कृपा है, इसको नजरों में समा लो, हृदय पटल पे सेव करो और चिंतन करते रहो, क्योंकि पता नहीं भविष्य में हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, या भविष्य में ये रहेगा कि नहीं रहेगा, हू नोज। इसलिए ब्रज की जब भी हम यात्रा करते हैं, हर एक यात्रा हमारी आखिरी यात्रा है, यही सोचकर आपको चलना है, और हर एक स्थान में आप आखिरी बार आ रहे हैं, यही आपको भाव रखना है। और जब हम आखिरी बार कहीं जगह आते हैं तो किस प्रकार से उस स्थान को ग्रहण करने का हम प्रयास करेंगे, उस प्रकार से आपको ये सब स्थान ग्रहण करने चाहिए। और जितनी हमारी साधना श्रेष्ठ है, स्ट्रांग है, हमारा हृदय साधना में है, उतना हम इस धाम को ग्रहण कर सकते हैं, उतना उसको अपने साथ में ले जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर भी हम जाएंगे उस स्थान को हृदय में लेकर घर जाएंगे, और हमेशा उन स्थानों पर निवास करेंगे मन से, आत्मा से और चेतना से। नहीं तो मत्था टेक यात्रा बहुत सारी होती है ना। मत्था टेक यात्रा मतलब क्या, हर जगह जाना, मत्था टेकना है, कुछ आचमन करना है, कुछ दान देना है, कुछ प्रणाम करना है, परिक्रमा देनी है, चरणामृत लेना है, प्रसाद लेना है, भाग जाना है। अच्छा है, उसमें कुछ पाप नहीं है, लेकिन वो धाम जो आपको लाभ दे सकता है उतना लाभ इस मत्था टेक यात्रा में नहीं मिल सकता है आपको। जब तक आत्मा आपकी इसमें परिपूर्णता से समर्पित नहीं होती है, टिल द टाइम यू डोंट सरेंडर एंड ऑफर योर सेल्फ एट द लेवल ऑफ हार्ट, टिल द टाइम द फुलेस्ट मर्सी इज नॉट मैनिफेस्ट फॉर यू. इसलिए आप सबको हम विनती करते हैं बार बार कि हृदय से पुकारो, हृदय से रहो, मन को यहां वहां भटकने मत दो, एकाग्रता से रहो, पुकारो पुकारो पुकारो, क्योंकि पुकारने के लिए मनुष्य जीवन दिया है. इस जीवन में नहीं पुकारेंगे तो कब पुकारेंगे राधा रानी और कृष्ण भगवान को? यही जीवन है, वो भी समाप्त हो रहा है, अभी ज्यादा समय नहीं बचा है, अभी कम कम होते जा रहा है और हम भी दूसरे कोने में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, है ना. शरीर बता रहा है कि हम अभी दूसरे कोने में जा रहे हैं, अंतिम कोने में पहुंच रहे हैं. अभी नहीं पुकारेंगे तो कब पुकारेंगे?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
और राधा रानी सुनती है हमारी पुकार, हृदय से की गई पुकार. अगर कंठ से जोर से भी नहीं की होगी लेकिन हृदय से अगर की गई है असहायता के साथ, शरणागति की भावना के साथ, तो उसको स्वीकार करती है और हम सबको अपना बना लेती है. हम सब उनका बनने के लिए आए हैं. अपना बनकर हम लोग बहुत दिन तक रहे, अपना अपने परिवार का, अपने जाति का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने बिरादरी का. अभी हमें उनका बनना है, उनके गोद में रहना है, उनके शरण में रहना है, प्रेम से रहना है, सेवा में रहना है. इसलिए ये सब प्रयास है. तो राधा कुंड का धाम जो है वो ब्रज से, ब्रज में जितने भी आप भजन करोगे उससे भी कई गुना अधिक लाभ भजन का राधा कुंड के क्षेत्र में होता है. यहाँ पर तो बड़े बड़े लोगों को भी प्रवेश नहीं है, जैसे बलराम जी यहाँ पर नहीं आते क्योंकि वो राधा और कृष्ण की अंतरंग लीलाओं के उत्कटता को भंग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो ज्येष्ठ हैं तो उनके होने से तुरंत संकोच हो जाएगा और वो लीलाएँ प्रकट नहीं होगी. इसलिए वो राधा बलराम जी भी कुसुम सनोवर पे रहते हैं, उधर दाऊ जी का मंदिर है, वो लास्ट स्थान है उसका, वहीं से वो देखते रहते हैं. वो निहारते हैं सब कुछ लेकिन वो वहाँ के, वहाँ से राधा कुंड घेरा शुरू होता है और वहीं से देखते हैं. जैसे वो गोवर्धन पे चंद्र सरोवर पे जब रासलीला हो रही थी तभी वो गोवर्धन से झुक के देख रहे थे उसको, ताकि उनके होने से वहाँ पर संकोच ना हो, ऐसा भाव है उनका. हाँ, मतलब एक सीधा अप्रिशिएशन, सीधा मूड कि परम भगवान बलराम जी भी किस भाव में यहाँ पर आते हैं, तो हमको कैसा रहना चाहिए. फिर भी हमारा भाग्य है, हमको वो हमारे पापी शरीर को लेकर यहाँ प्रवेश मिल रहा है. कोई योग्यता नहीं है, कोई तपस्या नहीं किया हमने, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जिससे हमको ये प्राप्त हो. इसको अनन्य कृपा कहते हैं, कॉजलेस मर्सी, अचिंत्य कृपा, अनाकलनीय कृपा. कैसे है समझ में नहीं आता लेकिन मिल तो रही है, तो लेने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए. देने वाला दे रहा है दिल फोड़ खोल के और लेने वाला उसको लेने में कंजूसी कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं भगवान. यहाँ पर ऐसी कृपा है कि जब राधा रानी चलती है तो पैर में कुछ लगता है तो पूछते क्या है, तो सखी कहती है कि यहाँ पर कल मादा सुअर की मृत्यु हो गई है, उसका शरीर पड़ा है यहाँ पर. तो राधा रानी एक नज़र उस पर देखती है और कहती है इसको अपनी पार्षद में ले लो. तो तुरंत तत्क्षण ही वो जो मादा सुअर का जीव है, आत्मा है, वो तुरंत सखी बन जाता है, राधा रानी के निकट के पार्षद वृंद में उसका प्रवेश हो जाता है. ऐसी कृपा है यहाँ पर. इसलिए पात्र तैयार रखो, कब कृपा होगी, कब कृपा होगी, इसका कोई अंदाज लगा सकता नहीं. और ये ऐसा धाम है राधा कुंड कि इसमें जितने भी संप्रदाय के जितने भी आचार्य हुए हैं वो सब लोग यहाँ पर आए हैं और सबने अपना भजन यहाँ पर किया है. इसलिए राधा कुंड एक सभी स्थानों का एक एक क्या कहते हैं उसको, ग्रुप है. हर व्यक्ति जहाँ बैठे हैं उनका भी स्थान है, हर मूर्तियाँ जहाँ पर आई हैं उनका भी स्थान है, हर प्रकार के आचार्यों का स्थान है. जैसे हमारे सामने जो है ना वो जीव गोस्वामी की भजन कुटी है ठीक सामने, और राधा दामोदर जी का मंदिर भी है उसके अंदर. क्योंकि जब औरंगजेब का हमला हुआ तब जितने भी मूर्तियां थी भगवान की, अच्छा विग्रह, वो सबको वहां से निकाल कर यहाँ लाया गया। केवल राधा रमन जी उनको बिस्तर के नीचे छुपाया गया, लेकिन बांके बिहारी सबको लाया गया। और सब लोगों ने, सब मूर्तियों ने यहाँ पर कुछ समय के लिए निवास किया है, इसलिए आपको सब मंदिर मिलेंगे यहाँ पर। राधा रमन जी का मिलेगा, राधा वल्लभ जी का मिलेगा, तो आज राधा वल्लभ जी का मंदिर इधर ही है आगे, राधा गोविंद जी का उधर है थोड़ा सा आगे, और परिक्रमा करते जाएंगे तो सब मंदिर मिलेंगे आपको। नित्यानंद जी की बैठक मिलेगी, महाप्रभु चैतन्य की बैठक मिलेगी, सबका यहाँ पर स्थान है। फिर यहाँ से कुछ विग्रह यहाँ से काम भी बन गए हैं और वहाँ पर कुछ समय निवास किया है, तो वहाँ पर भी सब देवताओं की मूर्तियों के स्थान है। फिर लौट के आए हैं, फिर वृंदा देवी वहीं रही है, फिर बांके बिहारी जी वो सब लोग लौट के वृंदावन चले गए, और गोविंद देव, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी वो जयपुर चले गए हैं, ऐसा इतिहास है। लेकिन लीला क्या बताती है कि राधा कुंड इतना प्रिय स्थान है कि सभी विग्रहों ने यहाँ पर रुकना चाहा, और भी कहीं रुकने, सब सभी ब्रज धाम है ना, छठिकरा भी ब्रज धाम है, आजाई भी ब्रज धाम है, हाँ शेरगढ़ भी ब्रज धाम है, वो सब रास्ता में है, लेकिन राधा कुंड के किनारे रुके इसका महात्म्य को प्रकट करने के लिए। तो संक्षेप में कथाएं तो लंबी लंबी है। अरिष्टासुर कंस की ओर से आया था, संध्या के समय आया था, भगवान मुरली बजाकर रासलीला के लिए गोपियों को बुला रहे थे, उस समय अरिष्टासुर आता है और उसका भयंकर वर्णन शास्त्र में दिया है कि हरेक कदम पर धरणी कंप, हरेक कदम पर जल का स्रोत ऐसे फव्वारे की तरह जमीन से उठ रहे हैं, जितने भी पहाड़ थे वो चकनाचूर हो रहे हैं, बादल आकाश से यहाँ वहाँ हो रहे हैं, हवा जो आ रही है वो तूफान की तरह पेड़ गिरा रही है, जो गर्जना हो रही है उसमें गर्भवती गोपियों की गर्भपात हो रहे हैं, इतना भयंकर ऐसा आतंक जो है ना वो कोई भी आज के जमाने का आतंकवादी नहीं कर सकता है, इतना भयंकर आतंक। इसमें एक ही साथ भूकंप हो रहा है, धरणीकंप हो रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, बादल इधर से हो रहे हैं, जमीन से फव्वारे उड़ रहे हैं इधर से, और वो ऐसे बहुत मोहक फव्वारे नहीं उड़ रहे हैं, बहुत विश्व घातक फव्वारे ऐसे जो जानलेवा जमीन से, जमीन के जल के स्रोत ऊपर आ रहे हैं, ऐसा भयंकर आतंक में अरिष्टासुर आया। और उसका युद्ध का भी बहुत सुंदर वर्णन है, गोपाल चंपू में है, भागवत में है, बहुत ही रोचक वर्णन है, सब देवता आकाश से देख रहे हैं। फिर भगवान उसको दोनों पैरों से उठाते हैं और पटक कर उसको मार देते हैं, मृत्यु के पहले आकाश में ही वो मलमूत्र विसर्जन करता है और उसकी आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। फिर भगवान जब आते हैं तो सब गोपियाँ उनको टाल देती हैं, कहते हैं अपने धर्म के प्रतीक जो बैल हैं उसका वध किया है वृषभ का, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। एक बात बड़ी रोचक है यहाँ पर कि भगवान को साक्षात भय भी डरता है, लेकिन भगवान भी डरते हैं किससे, जब जब यशोदा डंडा दिखाती है तो डर जाती है, जब ग्वाल बाल बोलते हैं कि आप हार रहे हो और हार के समय पर अभी जा रहे हो भोजन करने के लिए, भोजन का बहाना करके, तो कल जब आओगे ना तो खेल में आपको लेंगे नहीं, तो इससे भगवान बहुत भयभीत हो जाते हैं। हाँ कितने बड़े भगवान अच्छे हैं देखो। और जब गोपियां कहती ना हम आपसे बात नहीं करेंगे, तो इट्स लाइक अ बिगेस्ट थ्रेट फॉर हिज लाइफ, बिगेस्ट थ्रेट। बोले क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे देवता पूजन कर रहे हैं, नहीं कुछ लड़कियां बात करके तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं उन सबको छोड़ के इनके लिए वो आए हैं और वो कह रहे हैं बात नहीं करेंगे, इससे बड़ी धमकी, इससे बड़ा डर, इसकी बड़ी अप्रिय घटना भगवान के लिए कुछ नहीं है। इतना वो भक्तों को, भक्तों पर प्रेम करते हैं, इसलिए उनका भक्त बनना चाहिए ताकि उनका प्रेम हमको मिले, हम उन पर प्रेम करें। तो फिर वो कहते हैं क्या करना होगा बताइए, हम आपसे बात भी कहे बिना रह नहीं सकते हैं। तो कहते हैं आपको सारे जितना भी आपने, जितना भी सृष्टि जहाँ पर भी है, जितने भी तीर्थ हैं, सब जगह दर्शन स्नान अर्चन पूजन करके आपको आना है। तो कहते कोई बात नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम सबको यहीं बुला लेते हैं, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, सब भगवान के पार्षद हैं, सब भगवान के सेवक हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं, और भगवान को भी लीलाओं के माध्यम से इन सभी लोगों को उस पर सम्मिलित करना है, सबको जोड़ना है। भगवान क्या कर रहे हैं सबसे, सभी लोगों को, तीर्थों को, कुंडों को, सरोवरों को, नदियों को ना जोड़ रहे हैं अपनी लीला में। गरुड़ को भी राम भगवान ने बताया था कि वैसे तो कुछ जरूरत नहीं थी, लेकिन आप बहुत दिन से दूर थे इसलिए मैंने आपको जोड़ दिया इस लक्ष्मण जी के, है ना, वो नागपाश की लीला में भगवान बताते हैं गरुड़ को, आई वॉन्टेड टू एसोसिएट विथ यू, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। ऐसे सभी किसी को भूलते नहीं भगवान, किसी को नहीं भूलते। वो थे ना वो मुचुकुंद, वो सत्ययुग में सो रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जाके उसको उठाए, ऐसा ऐसा वरदान मांगा था उसने, लेकिन भगवान नहीं भूले उसको, ऐसा घुमाया लीला अपना कि खुद ही वहां पहुंच गए, उसका उद्धार भी किया, कालियावन का वध भी किया, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो भूलते नहीं है किसी को, हम भूल जाएंगे हमने क्या वादा किया। अभी ललिता कुंड में आए तो भाव में आकर कुछ प्रार्थना किया कि भगवान सब छीन लो, टेक एवरीथिंग अवे, आई वॉन्ट टू बी योर्स। और फिर भगवान, तो भगवान सुनते ना यहाँ पर, बहुत लोकल कॉल है यहाँ पर। तो जब वो उस पर कार्रवाई करने लगते हैं तो हम बंबई में आके पुकारते हैं, भगवान क्यों छीन रहे हो सब, क्यों सुन रहे हो, क्योंकि भूल गए ना हम लोग बंबई जाते हैं तुरंत, लेकिन भगवान नहीं भूलते। एक बार किसने बोला ना तवास्मिति, कि मैं आपका हूं अपना बना लो, तो हम भूल जाएंगे हमने क्या कहा था, लेकिन वो नहीं भूलेंगे। प्रभु रामचंद्र ने वादा किया है, एक बार रावण भी बोलेगा ना आके मुझे तवास्मिति, तो मैं उसका हो जाऊंगा, वो मेरा हो जाएगा। ऐसा प्रभु ने हमको इतना अच्छा वातावरण बना दिया है कि आप केवल एक बार भगवान के सामने खड़े होकर धाम में या घर में बोलना है कि मैं आपका हूं, तो फिर वो सभी धामों को तीर्थों को बुलाते हैं और वो हाथ जोड़कर आते हैं सब लोग, और अपना जल देते हैं, अब खुद जाते हैं अंदर उसके, मतलब प्रविष्ट हो जाते हैं। पर्वत, कुंड, स्थान, तीर्थ, जगह, वन, उपवन, जितने भी पवित्र स्थान हैं, लीला स्थलियाँ हैं, सब प्रवेश करते हैं और फिर भगवान उसमें स्नान करते हैं अपने सखाओं के साथ। फिर आके कहते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने राक्षस के पक्ष में यहाँ पर हमारे से विवाद किया है। राक्षस था वो, हमने कितना समझाया आपको कि बैल तो है लेकिन वो ऐसा बैल थोड़ी होता है धर्म का प्रतीक, जो धरणी कंप करा रहा है और पर्वतों को चकनाचूर कर रहा है और वो गर्भपात करा रहा है, वो थोड़ी धर्म का प्रतीक होता है, वो तो राक्षस था। बोले हम नहीं जानते, तो अभी ठीक है आपने ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेकर हमसे विवाद किया, इसलिए आपको भी अभी हमसे बात करना है तो सभी तीर्थों में स्नान करना होगा। और बाय द वे है लोग खड़े हैं उधर, वो उनकी सेवा भी ले सकते हैं हम, अभी तक गए नहीं है जो हमारे धाम में प्रवेश किए ना, खड़े हैं। बोले नहीं नहीं, और कहते हैं कि अगर आपको शॉर्टकट करना है अच्छी तरह से तो मेरे कुंड में भी आप स्नान कर सकते हो। बोले नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे आपके कुंड में। क्यों? क्योंकि अरिष्टासुर का मारा हुआ जो पाप है ना वो उसमें आपने छोड़ दिया है, तो उसमें हम लोग नहीं स्नान करेंगे, हम अपना नया कुंड बनाएंगे स्पेशल। तो यहाँ से मानसी गंगा की तरह लाइन लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राधा कुंड प्रकट होने के पहले मानसी गंगा प्रकट हुई थी। लाइन लगाते हैं यहाँ से मानसी गंगा तक, वहाँ से पहले सखी घड़ा भर रही है और वो ट्रांसफर करते करते यहाँ पर कंगन से किए हुए गड्ढे में डाल रहे हैं, पसीना आने लगता है कपाल प्रदेश पर। तो कृष्ण भगवान कहते हैं इतना क्यों कष्ट कर रही हो, सब गोपियाँ थक रही हैं, ऐसे युग के और ब्रह्मा कल्प के अंत तक भी आप करोगे मटका तभी भी कुंड नहीं भरने वाला है। तो एक इशारा करते हैं जो खड़े ना सब देवता लोग जो धाम पे, एक को इशारा करते हैं उनमें नेता को, वो चक्रवर्ती पाद ने ना उसके 20 श्लोक दिए हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक दिए हैं, कैसे उनका वार्तालाप होता है। तो इशारा करते हैं वो आते हैं और हाथ जोड़कर राधा रानी को निवेदन करते हैं, राधा रानी कृपामयी करुणेश्वरी, हम खड़े हैं आपके लिए, आपकी कृपा का इंतजार कर रहे हैं, आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, क्यों कृपा कीजिए, हाँ कब आपकी कृपा का कटाक्ष हमारे पर आएगा, सेवा दीजिए। कृष्ण भी कहते हैं इनको अभी सेवा दीजिए, बहुत हाथ जोड़कर लालायित हो रहे हैं। तो फिर करुणेश्वरी परम करुणामयी राधा रानी उनको कहते हैं ठीक है करो सेवा। तो सब अपना जल और खुद प्रवेश करते हैं, जल भी देते हैं, उतने में ही श्याम कुंड का जो एक बॉर्डर है वो फट के वहां से सारा जल जो है वो तूफान की तरह अंदर प्रवेश करता है और फिर राधा कुंड का निर्माण होता है। और जैसे ही राधा कुंड का निर्माण होता है श्री कृष्ण भगवान जो है ना वरदानों का वर्षाव करना शुरू कर दे। वो कहते हैं राधा कुंड नहीं है, ये जल नहीं है, ये मेरी परम प्रियतमा राधा रानी का प्रेम स्वरूप है, द्रवरूप प्रेम है उनका, लिक्विड लव। पहला वरदान दे दिया। दूसरा कहते हैं कि ये इसमें जो भी स्नान करेगा, जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है उतना प्रिय हो जाएगा, और इसमें जो स्नान करेगा राधा रानी के मन में मेरे लिए कितना प्रेम है उतना प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा। अलग अलग है दोनों, बाय द वे वो द डिफरेंट। एक ये राधा रानी का द्रव रूप प्रेम है, एक इसमें जो स्नान करेगा वो जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है उतना प्रिय हो जाएगा, और एक तीसरा राधा रानी को जितना मेरे मन मेरे लिए प्रेम है वो प्रेम उसको प्राप्त हो जाएगा, और ये मेरा सबसे प्रिय धाम होगा, प्रिय स्थान होगा, यहां पर जो भी आएगा वो मुझे प्रिय हो जाएगा। ऐसे बहुत ही सुंदर वरदान भगवान ने दिए। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर आए तो सब लोग ऐसे कूदने लगे उसके अंदर, जंप मुटका मारने लगे, क्या क्या करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा चलो सब लोग बाहर निकलो यहां से, गेट आउट ऑफ दिस कुंड। ये कुंड हमारे जैसे पापियों के लिए क्रीड़ा करने के लिए नहीं है, स्विमिंग करने के लिए नहीं है, ये बहुत उच्च उच्च कोटि का धाम है। यहां पर बात भी नहीं करना चाहिए भगवान के नाम के अलावा, मुख से मन में बुद्धि में कोई विचार भी नहीं आना चाहिए, इतना पावरफुल धाम है ये। तो आप लोग सब लोग उसमें अपने पैरों से पानी उछाल रहे हो, ये कर रहे हो, कूद रहे हो, मजा कर रहे हो, पानी एक दूसरे को उछाल रहे हो, ये सब काम यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, वो बाकी कहीं भी हो सकते हैं, जमुना जी भी हो सकता है, गंगा जी में आप कर सकते हो, वहां पर भी गंभीर होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं कर सकते। हम भी यहां पर 86 में सबसे पहले आए थे, लेकिन 98 तक केवल जल को स्पर्श करके सर को लगाते रहे, महिमा सुनते रहे, लेकिन कभी गुरुजी ने स्नान करने का परमिशन नहीं दिया। 98 में सच्चिदानंद महाराज और हमारे गुरुदेव वो सब यात्रा लेकर शाम को 7:30 बजे अंधेरे में यहाँ पर आए थे, और 1.25 घंटे का एक प्रवचन हुआ था पिन ड्रॉप साइलेंस में, भाव को बनाने के लिए, इसको भी प्रवेश करने के लिए भी भाव कैसा होना चाहिए, उसका एक बहुत लंबा चौड़ा गहरा गंभीर प्रवचन दिया गया। उसके बाद में 2500 लोग एक भी मुंह से ध्वनि न करते हुए पूरे मौन साइलेंस में राधा कुंड, श्याम कुंड और राधा कुंड, ऐसे 3 डिप्स लिए गए, केवल भगवान के नाम का तीव्र रो रो के उच्चारण करते हुए 3 डिप्स लिए गए। और मुझे याद है उस समय मैंने 100 या कुछ 210 डिप्स लिए थे, सबको याद करके पुकारते हुए, मतलब एक ही लाइफ टाइम का मौका, पता नहीं आज मिलेगा कि अगली बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितने भी लोगों का याद है सब लोगों को, इतना ठंड थी उस समय, इतना कोल्ड पानी था, क्या होगा एडमोस मर जाएंगे ना ठंड से, कोई बात नहीं सबके लिए पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए सेफ साइड में ऐसा है कि जल में स्पर्श करके कपाल पे लगाना ही अच्छा है, और जल में स्पर्श करके 3 छींटे सर पे डालना अच्छा है, क्योंकि हमारी चेतना हमारा भाव पता नहीं परिपूर्ण है पर्याप्त है कि नहीं है। सेफ साइड यही है, सीढ़ियों में आप प्रणाम करो, जल को स्पर्श करो, सर पे लगाओ, 3 बार छिड़को, मन करे तो मुँह में लो, क्योंकि अभी वैसे जल इतना शुद्ध भी नहीं है, आजकल इतना गंदगी है, तो आपको लगता होगा ऐसे है तो वो भी मत लो, जिसको श्रद्धा है वो बाजू करो पानी और बीच का पानी काचमन करो, तो श्रद्धा के ऊपर है सब कुछ, और आगे चलो। तो ललिता कुंड भी ऊपर से थोड़ा लगता है गंदा, लेकिन आप हाथ हिलाएंगे तो आपको स्वच्छ पानी मिलेगा, क्योंकि ऐसी कृपा बार बार नहीं होती है, जितने आपकी श्रद्धा है उतना आपको लाभ मिलेगा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हो गया, उस समय तक 12 बज गए थे रात के, तो रात्रि के मध्यान्ह क्या कहते हैं उसको, मध्य रात्रि में राधा कुंड का आविर्भाव हुआ है, और 7 समुद्र जो शिव सागर सब भी यहां पर उपस्थित हैं। राधा कुंड का जब भी आविर्भाव दिन आता है ना, कार्तिक शुद्ध अष्टमी के वद्य अष्टमी, कार्तिक महीने में अष्टमी, दूसरी अष्टमी आती है, पहली अष्टमी अलग होती है, पहली अष्टमी सॉरी कार्तिक मास में, तो उस समय 12 बजे रात को यहाँ पर दूध निकलता है राधा कुंड में। क्यों निकलता है? क्योंकि शिव सागर है ना उसके अंदर, वो सब ऐसे उछालते हैं अपने आप, उछल जाते हैं पूरे। इतना अद्भुत धाम है ये कि बीच में बहुत सारा कीचड़ जमा हो गया था, इसलिए उसका साफ सफाई का काम शुरू हुआ था, कई क्रेन लगाए थे, बहुत कीचड़ निकाला। तो जब भी नीचे जाकर कीचड़ निकाला ना, तो एक तो ओरिजिनल कुंड था ना, वो कंकण कुंड नाम से जानते हैं उसको, कंकण से बनाया था ना उसको, तो कंकण कुंड बोलते हैं, और वो शाम कुंड। तो ओरिजिनल कुंड बहुत छोटे हैं, वो भी बॉर्डर उसके अंदर है, अभी तो विशाल बनाया गया उसको, वो भी बॉर्डर उसके अंदर है, उसका भी दर्शन हुआ। और एक अद्भुत बात हुई, कैसे हजारों स्रोत निकले पानी के, ऐसे जो कई मीटर आकाश में उड़ रहे हैं, जैसे ही कीचड़ निकला गया तो वो इतना फोर्स था पानी के अंदर, उसमें दूध की धार भी थी, इतना फोर्स था कि लोग उसको ना रिपेयरिंग करने वाले उसको मैनेज नहीं कर पाए, इतना फोर्स पानी का था। तो उन्होंने उसमें सीमेंट के बोरियां डाल दी, तब जाके कंट्रोल हुआ वो। इसका मतलब क्या है, वो सारे स्रोत स्वयं स्फूर्त स्रोत है, वो सेल्फ मैनिफेस्ट है, और अभी भी वो है वहां पर, सभी तीर्थ धाम सब निवास करते हैं, और वही ऐसे फूट कर फिर बहुलाष्टमी के दिन प्रकट हो जाते हैं। लोग मैंने देखा ऐसे कि पहने हुए कपड़े से वो द्वार निकलते ही उस पर कूद जाते हैं, स्ट्रेट बैग वैग के साथ, आविर्भाव के दिवस के समय अभूतपूर्व भीड़ रहती है यहाँ पर। इस साल भी हम राधाष्टमी राधा कुंड आविर्भाव के दिन यहाँ पर थे, बहुत नौका विहार होता है उसके अंदर। एनीवेज, तो कुछ समय बाद भगवान की इच्छा से धाम लुप्त हो जाते हैं। तो जब गौरांग महाप्रभु आए थे तो वो काम्यवन से यात्रा करते करते आए, नंदगांव गए, नंदगांव से फिर गोवर्धन की ओर आए, फिर उन्होंने गोविंद कुंड का दर्शन किया और इधर आ गए। वो लोगों को पूछ रहे हैं राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, कोई बता नहीं पाया उनको। तो फिर वो यहाँ ही आकर श्याम कुंड अभी जहाँ पर है उसके किनारे, तभी श्याम कुंड नहीं था मतलब अप्रकट था, बैठ गए वो, और उन्होंने चिंतन किया बहुत गहराई से, और उनके चिंतन में ध्यान में उनको राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन हुआ। तो जैसे दर्शन हुआ वो उठे और वो कूदे, और कहाँ कूदे, छोटे से जो ऐसे पडल कह सकते हैं उसको, छोटे से जो ऐसे गंदे भी लग रहे थे, ऐसे लगता था गटर के गंदे पानी का कुछ स्रोत है यहाँ पर, उसमें कूद गए वो। तो सब ब्रजवासी लोग आश्चर्य के हो गए, अरे सन्यासी इतना तेज, इतना गौर कांति, इतना स्वर्ण कांति वाला सन्यासी ऐसे गंदे पानी में क्यों कूद रहा है। वो ना ही कूद रहे, उसके अंदर का जो मट्टी है उसको निकाल कर शरीर में मालिश कर रहे हैं उसका, और हरी बोल चिल्ला रहे हैं। फिर जब भाव से शांत हो गए तो आवेश से तो बताया कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए 500 साल पहले राधा कुंड श्याम कुंड का पुनर्आविर्भाव किया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने उनके आदेश से इसका पुनर्जीर्णोद्धार किया। एक व्यक्ति जो है ना वो धन लेकर बद्रीनाथ जा रहा था, तो बद्रीनाथ ने उनको दर्शन दिया, मतलब महाप्रभु चैतन्य वो स्वयं कृष्ण है, वही बद्री विशाल है, बद्री विशाल ने दर्शन दिया और कहा कि आप ये धन यहाँ पर मुझे मत दो, उधर वृंदावन में जाओ, उधर दास गोस्वामी नाम के गोवर्धन के पास रह रहे हैं, उनको दो राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार करने के लिए। तो वहाँ से लौट के आया वो, और दास गोस्वामी को ढूंढकर उन्होंने धन दिया, उस धन से ये पूरा राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार दास गोस्वामी ने किया। उनका यहीं पर भजन कुटी है, थोड़ा आगे जाकर थोड़ा सा यहाँ से पीछे उनका समाधि भी वहीं पर है, राधा गोपीनाथ जी का विदुर विग्रह भी वहीं पर है। इस तरह से राधा कुंड श्याम कुंड का जीर्णोद्धार हुआ, जिह्वा प्राप्त हुई, जिह्वा मंदिर बना, फिर पांडव सपने में आए कि हमारे यहाँ पर उत्खनन मत करो, हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं। इसका मतलब कई संत यहाँ पर पेड़ वृक्ष वेली के रूप में भजन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो श्याम कुंड ऐसे ऐसे बना, गोल गोल नहीं बना, चौकोनी नहीं बना, क्योंकि पंच पांडव वहाँ भजन कर रहे थे पाँच पेड़ों के रूप में, उसमें से एक पेड़ अभी भी मृत अवस्था में वहाँ पर है, और पाँच पेड़ों का दर्शन भगवान की दया से हमने भी किया है। इस तरह से गोपी कुआं बनाया लोगों को कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि लोग इसका प्रयोग न करें उस घरगुती काम के लिए। तो वापस वही बात, कल जो कह शाम को कही थी ना, आज वही बात कह रहे हैं, संत की कृपा से ही ये सब कुछ मिल सकता है। संत नहीं हमारे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा आपको, भगवान संत को देते हैं या संत हमको देते हैं, और कोई चैनल नहीं है उसका, संत का होना जरूरी है, और हमारा संत के साथ संबंध होना जरूरी है। संत तो होते ही हैं लेकिन हमारा संबंध नहीं होता उनसे, संबंध होना, संबंध बनाना, संबंध को दृढ़ करना, ये जीवन के यश का रहस्य है। जब संत कृपा करते हैं तो सब आध्यात्मिक धन जो है वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अनंत दिव्य स्थान इस राधा कुंड श्याम कुंड क्षेत्र में विराजमान है। वो श्याम कुंड में एक जगह है पंच पांडव घाट, जहाँ पर पंच पांडवों का पांच पेड़ है। वहाँ पर राधा रानी रोज 11:48 पे अपने सखियों के साथ में स्नान करने आती। और उसके अपोजिट साइड में पाशा खेला घाट है, स्नान करने के बाद कृष्ण आते हैं उनके साथ में चेस खेलते, वो चौसर का खेल खेलते हैं। और राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण भगवान को चौसर के खेल में हरा देते हैं। सब जगह वो उनको चीटिंग कर करके हराते हैं, यहाँ पर आके पाशा में पाशा खेले में वो हरा देते हैं उनको। से बहुत मधुर 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 अति मधुर मधुरोत्तम लीलाएं यहाँ पर भगवान करते हैं, प्रेम लीलाएं करते हैं। तो क्या क्या कहें अभी छोटे समय पर, लेकिन इतना जरूर कहना चाहिए कि जहाँ सभी संतों ने भजन किया है, उत्कट भजन किया है, जहाँ सभी विग्रहों ने अपना निवास दिया है, उस जगह पर भगवान ने हमको आज प्रवेश दिया है। इतने क्षण हमको दिए हैं, हमको बार बार हृदय को अर्पण करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और कोई रिमेनिंग? वो क्या अभी वॉट एवर मुहूर्त दे चूज इज द मुहूर्त, बट शास्त्र में दिया है 11:48। वो उसका नाम वर्णन ऐसे दिया ना, घटिका ऐसे वर्णन दिया है, उसका ट्रांसलेशन जो है वो 11:48 है। वो कुछ हर 20 में एक मुहूर्त होता है, उसका अंदर कुछ एक छेद होता है, फिर उसका निमेश होते हैं, निमेश के बाद में कुछ लव होता है, लव के बाद में ऐसे सब उसका गणित है। यहीं पर वो बहुत सारी लीलाएं हुई है, यहाँ पर ही वो कृष्ण भगवान पंडा बने थे और वो यहाँ से पंडा बनकर सूर्य कुंड गए थे, वहाँ पर राधा रानी के लिए सूर्य की पूजा की थी, ऐसे सब लीलाएं बहुत यहाँ पर हैं। और गोवर्धन वैसे ही भगवान को बड़ा प्रिय है, गोवर्धन के इर्द गिर्द भगवान ने ये वचन भी दिया था कि आपके इर्द गिर्द हम अपने अंतरंग लीलाओं को प्रकट करेंगे, क्योंकि रामायण में उनकी सेवा भगवान ने नहीं ली तो गोवर्धन जी बड़े दुखी हो गए थे, तो उनको उन्होंने सांत्वना दिया है। तो गोवर्धन के दो आँखें हैं श्याम कुंड राधा कुंड, गोवर्धन की गर्दन दान घाटी है, गोवर्धन का हृदय कुसुम सरोवर है, गोवर्धन की पूंछ पूंछड़ी का लोटा बाबा जहाँ बैठे हैं वहाँ पर है, अनंत स्थान है यहाँ पर। और सर्वश्रेष्ठ भक्त जो हैं भगवान की गोपियाँ, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त जो हैं वो गोवर्धन का ऐसा गौरव कर रही है कि ये हरिदास वर्य है। जब सबसे बेस्ट लोग किसी को सबसे बेस्ट उत्तम कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गोवर्धन की स्थिति क्या है। वो आप सबको हम सबको भगवान की भक्ति प्रेम प्रदान करने वाले हैं, सक्षम व्यक्ति है। तो ये हम लोग राधा कुंड किनारे केवल नहीं है, गोवर्धन के तलैटी में भी बैठे हुए हैं। तो इसी शब्दों पर हम हाँ, तो यहाँ पर दो आपको बता जरूर बता देंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, बड़े धनी घर के राजपुत्र थे वो, हिरण्य मजुमदार गोवर्धन मजुमदार उनके पुत्र थे। तो सब कुछ छोड़कर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करके ब्रज में आए और यहाँ पर निवास किया उन्होंने, और यहाँ पर वो भजन करते थे। कैसा भजन करते थे ना, वो हम लोग केवल सुन ही सकते हैं, और सुनना ही अच्छा है क्योंकि वो उसकी नकल करेंगे तो नरक में जाएंगे हम। महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि रघुनाथ दास जी सनातन गोस्वामी जी इनकी नकल कोई करेगा तो वो नरक में ही निवास करेगा, तो कर ही नहीं सकता है या तो नष्ट हो जाएगा। तो इतनी महाप्रभु चैतन्य जब थे तभी भजन किया, लेकिन महाप्रभु चैतन्य जब चले गए ना तो एक दिन वो सोचा कि उन्होंने सोच रहे मन में कि मैं इनका विरह सहन नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा और गोवर्धन से कूद कर मैं आत्महत्या कर लूँगा। तभी शायद महाप्रभु चैतन्य सपने में आते हैं, अरे रघुनाथ तुमने तो कहा था कि तुमने सर्वस्व मुझे अर्पण किया है तो तुम्हारा शरीर भी मेरा हो गया ना, अभी तुम्हारा नहीं रहा। संन्यास का मतलब क्या होता है? काया वाचा मने, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, इससे वो शरणागत हो जाता है, समाज के लिए वो मृत हो जाता है। किसी की संप्रदाय में अच्छा हमारे समाज GSB में वो सन्यासी का श्राद्ध भी कर देते हैं सन्यास विधि के समय, दुनिया के लिए वो डेड हो जाता है, केवल भगवान के लिए जीवित है वो। उसके मंत्र भी ऐसे मंत्र है ना, वो मृत्यु वाले मंत्र कुछ मंत्र वो सन्यासी जप करते हैं, उनको पता नहीं है वो, लेकिन तीन बार उनको गायत्री के साथ कुछ जप करना पड़ता है, उसमें वो मृत्यु के भी मंत्र है। हर बार आपको याद दिलाते हैं कि आई एम नॉट अलाइव फॉर द वर्ल्ड, आई एम डेड फॉर द वर्ल्ड, आई एम अलाइव फॉर कृष्णा, ऐसा उसका सार है। तो महाप्रभु उनको प्रश्न पूछते हैं कि जो शरीर आपने मुझे अर्पण किया है वो कैसे आप तय कर सकते हो कि उसको नष्ट कर दूं आत्महत्या के माध्यम से। इट इज नॉट योर्स, इट इज माइन, हाउ यू कैन टेक डिसीजन विद माई प्रॉपर्टी। जाओ अभी आप मेरे लीलाओं का वर्णन करो जो आपको सांत्वना होगी आपकी। तो फिर राधाकुंड के किनारे बैठकर रघुनाथ दास जी रोज 3 घंटे गौर लीला का वर्णन करते थे, क्योंकि गौर लीला के साक्षी थे वो, उत्तरार्ध के नेक्स्ट हाफ के साक्षी थे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस सभा में बैठते थे, वो भी महाप्रभु की इच्छा से यहाँ पर आए थे दास गोस्वामी के सान्निध्य में। उन्होंने सारे लेक्चर्स के नोट्स बनाए। जाह्नवा देवी भी आई हैं खड़दा से, क्योंकि बहुत इतने वृद्ध अवस्था में थे, इतने 3 दिन में एक बार एक हाथ में जितनी जगह होती ना उतना छाछ पीते थे, उसको छछिया भर कह सकते हैं आप, इतना छाछ 3 दिन में एक बार पीते थे। और वो भी खाते खाते खुद को कोसते थे कि कितना बड़ा भोगी हूँ मैं, देखो इतना छाछ ले रहा हूँ। तो दास गोस्वामी वहाँ तक नहीं जा पाए जहाँ पर जाह्नवा देवी आई, तो जाह्नवा देवी स्वयं यहाँ पर आई है। नित्यानंद प्रभु की पत्नी दास गोस्वामी का दर्शन करने आई, दंडवत किया, और उन्होंने कई दिन निवास किया जाह्नवा देवी ने, उनकी बैठक भी यहाँ पर है, और रोज कथा सुनी उनकी। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसा भजन किया उन्होंने, गर्मी के समय यहाँ पर अभी भी 50-55 डिग्री टेम्परेचर होता है, 50 के आगे गवर्नमेंट डिक्लेयर भी नहीं करती, इतना भयंकर टेम्परेचर होता है। तो खुली जगह में बैठकर वो भजन कर रहे हैं और ऐसे चर्म जो है ना जल रहा है एक्चुअली, इतनी गर्मी, उतने में ये ऐसे मग्न होकर पूरे शरीर त्रिगुणातीत देह भावना से मुक्त होकर भजन कर रहे हैं। मग्न मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन राधा रानी को फर्क पड़ता है ना उनके भक्त को कष्ट होने पर। तो राधा रानी आकर ऐसे अपना पल्लू जो है ना वो उस पर लगाती है ऐसे, और खुद के उनके कपाल से पसीने आ रहे हैं उस गर्मी में, और वो अपने इस भक्त को छाया दे रही है। उसके पहले घटना हुई है, उसमें रघुनाथ दास जी भजन कर रहे हैं राधा कुंड किनारे, और शेर यहाँ पर पानी पीने आता है, क्योंकि बड़ा जंगल था उस समय, यहाँ पर सभी खूंखार जानवर आते थे। तो शेर जो है ना वो आकर पानी पी रहा है, तो कृष्ण आकर प्रकट होकर, कितने कृष्ण तो वहाँ पर उस समय नहीं थे ना, लेकिन कृष्ण प्रकट होते हैं, हाथ में डंडा लेकर उस शेर को भगा देते हैं ताकि दास रघुनाथ जी का भजन में बाधा ना हो। उस समय सनातन जी यहाँ पर आते हैं, रोज परिक्रमा करते थे ना वो, यहाँ पर थे, उनका चक्रेश्वर में निवास है, तो यहाँ पर आते थे। उन्होंने कहा अरे रघुनाथ कैसा भक्त है तू, राधा और कृष्ण को रिझाने के लिए उनकी सेवा के लिए आप जप करते हो और वो आपकी सेवा में आते हैं शेर को भगाने के लिए, कम से कम कुटिया तो बना लो अपनी। तो फिर भी इतने विरक्त थे ना वो, महाप्रभु स्वयं कहते हैं इनकी विरक्ति का कोई तुलना करेगा ना नष्ट हो जाएगा वो, ही विल नॉट एग्जिस्ट ओनली विल गेट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद वाली घटना है राधा रानी वाली, तब आकर फिर रघुनाथ दास जी को सनातन जी को स्वयं डांटते हैं आके, देखो राधा रानी भी आपकी सेवा में आ गई, खुद पसीना बह रही है और आपको छाया दे रही है। तब जाकर रघुनाथ गोस्वामी ने यहाँ पर कुटिया बनाई और फिर भजन किया, तभी जाकर कुटिया बनाई। इतने विरक्त थे वो, शरीर के बंधन से इतने मुक्त थे वो। और जब उनका शरीर पूरा हो गया, अंतर्धान हो गए वो, तभी मुसलमानों का बहुत आतंक था यहाँ पर, वो ना कब्रों में से समाधियों में से वैष्णव समाज के साधुओं का शरीर निकाल निकाल कर छिन्न विछिन्न करते थे उसे। तो हमारे जीव गोस्वामी इतने बुद्धिमान आचार्य थे, उन्होंने रीति रिवाज को लांग कर रघुनाथ दास जी के शरीर को दहन किया समाधि के, हम लोग क्या करते सन्यासी को समाधि में रखते ना शरीर के साथ पूरा, तो फिर भी उन्होंने प्रचलित रीति रिवाज को काट कर उनके शरीर को दहन किया और उनकी रक्षा को समाधि में विराजमान किया, क्योंकि जब ये समाधि तोड़ी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, रक्षा तो क्या करेंगे वो उसका। ऐसे बुद्धिमान आचार्य जीव गोस्वामी थे, उन्होंने समाधि बनाई है, वहाँ पर उनका शरीर नहीं है, उनकी रक्षा रखी गई है रघुनाथ दास गोस्वामी। हाँ, एशेस, रक्षा मीन्स राख से, अद्भुत लीलाएं यहाँ पर, बहुत अद्भुत। इसी राधा कुंड के किनारे फिर रघुनाथ दास जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से, सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से, राधा मदन मोहन जी विग्रहों के आशीर्वाद से, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा कुंड के किनारे बैठकर श्री चैतन्य चरितामृत का लेखन भी किया है। उनकी जगह है वहाँ पर, जहाँ पर बैठकर उन्होंने लिखा है। बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। किसी समय ऐसा मौका मिलेगा ना तो हम पूरा दिन यहाँ बिताएंगे और जगह जगह बैठकर कथा करेंगे। इतनी सुंदर जगह है ये। फिलहाल हम लोग ललिता कुंड को प्रणाम करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड को प्रणाम करते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड का आचमन करेंगे हम। और आपको एक विनती है कि आप थोड़ा तेज चलिए, क्योंकि आगे भी बहुत स्थानों का दर्शन करने का विचार तो है, लेकिन भाव से कोई यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए, मौन रखते हुए, प्रार्थना करते हुए परिक्रमा कीजिए। जहाँ उतरने का समय आएगा उतरिए, प्रणाम कीजिए, आचमन कीजिए और बस में बैठ जाइए। जय जय श्री राधे। वो है ना रामकुंड किनारे पे है वो, परिक्रमा में नहीं आएंगे। पांच पांडवों के जो पेड़ हैं उसमें से केवल एक ही पेड़ अभी है मृत रूप में उपस्थित है। जब आप श्याम कुंड का चैतन्य महाप्रभु के बैठक के सामने आचमन करेंगे, उसके सामने के किनारे पे आपको वो एक पेड़ दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर एक घाट है, ऐसी सीढ़ियाँ उतर रही है, वो पंच पांडव घाट है, उसके पीछे पेड़ है, वो आप दर्शन दूर से कर सकते हैं। एक और प्रभुपाद जी की लीला यहाँ पर है जो हमारे लिए बहुत समर्पक है। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे तभी यहाँ पर एक बार आए थे अपने छोटे बालक को लेकर, वृंदावन, क्या नाम था उनका, वृंदावन चंद्र को लेकर आए थे। वो गृहस्थ थे तभी, उनका बिजनेस था वगैरह, और भक्ति सिद्धांत जी महाराज उनके गुरु महाराज भी वहाँ पर इस समय विराजमान थे। तो भक्ति सिद्धांत जी महाराज ने उसमें बहुत थोड़े से वो उद्विग्न थे, क्योंकि उनके मठों में बहुत झगड़ा वगड़ा चल रहा था उस समय। क्या करते ना, भक्ति में आने के बाद भी हम लोग तो बाहर से आते हैं ना, भक्ति के अंदर सारे विकारों को लेकर ही आते हैं, द्वेष, ये सब जो अहंकार, पद की अभिलाषा, धन की अभिलाषा, मान सम्मान की अभिलाषा, हाँ, काम वासना, ये सब लेकर ही आते हैं। धीरे धीरे शुद्ध होता है, और जरूरी नहीं कि दीक्षा लिया तो सब खत्म हो गया, संन्यास लिया तो खत्म हो गया, सब बना रहता है वो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा सब। तो उसकी वजह से जब इन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए तो सब सन्यासी लोग झगड़ा करने लगे, मेरे लिए कौन सा ऑफिस, मेरे लिए कौन सा कमरा। तो भक्ति सिद्धांत जी थोड़ा दुखी हो गए थे उस समय। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ उनको मिले तो उन्होंने अपने हृदय को प्रकट किया अभयचरण के सामने और बताया कि जब कभी आपको मौका मिलेगा ना तो आप ये मंदिरों का मार्बल तोड़कर बेचकर उसको प्रिंटिंग प्रेस बनाना, और प्रिंटिंग प्रेस बनाकर उसमें किताब छापना। ये आदेश उनको यहाँ पर, इफ एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स, ये जो आज्ञा है ना, ये राधा कुंड किनारे भक्ति सिद्धांत जी ने हमारे प्रिय प्रभुपाद जी को दिया था। और एक विशेष रोचक बात है, जब उनका भक्ति सिद्धांत का जन्म हुआ था ना, तभी उनके पिताजी ने उनको बहुत दूरदृष्टि से, लॉन्ग साइटेडनेस, ही टॉट हिम इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एजुकेटेड इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये एक उनका इतिहास में आता है। तब से उनके मन में था कि ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अगर माहिर हो जाएंगे तो आगे जाकर किताब छपवाने में आसानी हो जाएगी, ये उनकी खासियत थी। उन्होंने ही, भक्ति सिद्धांत जी ने ही इस किताबों को, इन किताबों को, इन प्रिंटिंग प्रेस को बृहद मृदंग का नाम उन्होंने दिया है, ही नेम्ड इट एज बृहद मृदंग, कि ये इसकी आवाज़ जो है नॉलेज वाली आवाज़, किताबों की, ये दूर दूर तक बजती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, दे विल रिमेन। मठ मठ रहेंगे, मठ खत्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे, हाँ, जीर्ण हो जाएंगे, उद्धार नहीं होगा, लेकिन ग्रंथ जो है ना वो हमेशा रहेंगे और अनंत काल तक लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। ग्रंथ लिखने वाले संत जीवित रहे या न रहे, ग्रंथ जीवित रहेंगे, उसके साथ में ग्रंथ के रूप में वो आचार्य भी जीवित रहेंगे। ये दूरदृष्टि भक्ति विनोद जी को थी, भक्ति सिद्धांत चुकी थी, वो उन्होंने प्रभुपाद जी को भी दी, और उन्होंने भी आज जो ग्रंथ वितरण का जो महात्म्य और जो मैग्नानिमिटी है ना, उसको जितना इस्कॉन ने प्रकाश किया है और किसी ने नहीं किया। ग्रंथ वितरण को इतना जोर देते हैं, करोड़ों अरबों किताबें आज तक वितरित कर चुके हैं लोग। तो वो आदेश यहाँ पर भक्ति सिद्धांत जी ने राधा कुंड किनारे प्रभुपाद जी को दिया। बोलो श्रील प्रभुपाद जी की, श्री भक्ति सिद्धांत जी महाराज की, ठाकुर भक्ति विनोद की, राधा कुंड श्याम कुंड की।